आप सभी का इस ज्ञान सरोवर में ब्रह्मा कुमारीज एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड में ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व में सभी साधन है कि नहीं है, सभी साधन है, एयर कंडीशन भी है, मोबाइल भी है, कारें भी हैं, प्लेन्स भी हैं, सब कुछ होने के बाद अगर आदमी बीमार हो जाए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल हेल्थ केयर है, आज हमारे पास सीटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है, पेट स्कैनिंग भी है, हम स्टेम सेल थेरेपी भी करते हैं, जीन थेरेपी भी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, रोबोटिक सर्जरीज कर सकते हैं आज हम, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी तो बहुत पुरानी हो गई, किंतु आज हम सारा कुछ कर लेते हैं, किंतु उसके बाद भी क्या हमारा जीवन सुखमय बना है? आप क्या समझते हैं? आज का इंसान ऐसा कह सकता है कि मैं सुखी हूं? पैसे वाले लोग भी कह सकते हैं सुखमय सुखी हैं, कह सकते हैं? बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं, अंबानी फैमिली है, बिरला फैमिली है, या विश्व में भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या अमेरिका का राष्ट्रपति कह सकता है मैं सुखी हूं? कह सकता है? नहीं कह सकता ना। भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को सुखी समझ सकता है? कोई भी आदमी को आज उस ना उसके अंदर शांति है ना सुख है, कारण क्या है? अगर आज देखें, अगर हम भारत, अभी 2015 में एक सर्वे हुआ था, भारत की चार मेजर सिटीज है ना, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, ये चार सिटीज हैं, तो सर्वे किया गया, एडल्ट्स का सर्वे किया गया, तो ये पाया गया कि 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, मतलब हर एक आदमी के पास दो बीमारी तो एवरेज है ही है। 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है, 10 लोगों को डायबिटीज है, 40 लोगों को मोटापा है, 40 लोग मोटे ओबीज हैं, ओवरवेट है ना, 30% 40% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, 20% लोगों को हड्डियों की तकलीफ है, 10% लोगों को सांस की तकलीफ है। अगर देखें अगर हम, तो क्या हालत है आज दुनिया की? मतलब कोई भी आदमी आप अपने अंदर भी देख लेंगे अगर, तो आपको भी अपने अंदर दो बीमारी तो मिल जाएंगी शरीर की, नहीं है? सभी को मिल जाएगी देखने पर अंदर। और मन की बीमारी की बात करें तो कोई भी आदमी आज देखे, अगर मन की बीमारियां देखे, सोमे से मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे था, एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, अभी रशिया से जाके आया। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2.5 करोड़ लोग हैं सारे ऑस्ट्रेलिया में, भारत से 3 गुना बड़ा है, बहुत ही मतलब अमीर देश है, तो पता लगा वहां पर 25% लोग डिप्रेशन में है, सुबह से हर चौथा आदमी डिप्रेशन में है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसी हालत रशिया में है, रशिया में हार्ट की बीमारी भारत से भी ज्यादा है, तो हालांकि वो सिर्फ 14 करोड़ लोग हैं, भारत से 7 गुना बड़ा है, एरिया वाइज भारत से 7 गुना बड़ा है, पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है, भारत के 10-11% पॉपुलेशन है वहां की। तो अभी मतलब आप देखिए क्या हालत है आज समाज में ना, कोई देश, अमरीका में चले जाइए, अमरीका में भी यही हालत है। तो आज सबसे बड़ी बीमारी कौन सी होती? चिंता, चिंता सभी को है, कोई गुस्सा करना नहीं चाहता, गुस्सा पर सब करते हैं, नहीं करते। मैंने बताया 25% लोग, 20% भारत में भी डिप्रेशन में है, 10% लोग दवाई खाते हैं, दवाई खा के उनको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ती है, 10% लोगों को नींद नहीं आती दवाइयों के बगैर, और जल्दी चिंता गुस्सा सभी को है आज, या नहीं है? सब में डर है, सब डरे हुए हैं। अच्छा, बीमारी शब्द पता कहां से आया? बीमारी शब्द दो शब्दों से बना है, बी माना डर, मारी माना बने रहना। हमारे अंदर जो डर है ना, वो जो है हमारे अंदर बीमारी को जन्म देता है। आज उसी बात को हम समझेंगे कि कैसे हमारे विचार, सबसे बड़ा कारण क्या है समाज में, जब भारत या कोई भी देश ले लें, किसी भी देश को ले लें, सबसे हर बीमारी का कारण मन में अशांति आ गई है, शरीर में दुख आ गया है, हर आदमी रोगी है, हर मन रोगी है, हर मन दुखी है, वो क्यों है? हर देश में झगड़े हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि हमारे विचार कहीं खराब हो गए। सुना तो आप सबने है, आप सभी महात्मा लोग हैं, आप सभी को कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता के बारे में गहराई से आपने सब समझा है, सोचा है, उस पर चिंतन किया है कि ये तो आप सब जानते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ऐसे सभी ने सभी मानते हैं बात को, पर उसका पीछे उस कैसा मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया है कि संकल्प से, ऐसे हम संकल्प करते हैं आज तो सामने कुछ, मैं सोचूं मेरे पास अभी एक फूल आ जाए तो फूल आता है क्या? या कोई आदमी बीमार है तो उसको हम क्या ठीक हो जाए तो ठीक होता है क्या? नहीं होता ना। तो आज संकल्प इतने कमजोर क्यों हो गए? क्या कारण है शक्ति नहीं रही संकल्प में? और कैसे हम ऐसे संकल्पों को रचना करें, श्रेष्ठ विचारों की रचना करें, जिससे हमारा जीवन, सबसे पहले तो अपना जीवन सुखमय हो जाए, हमारे मन में शांति आ जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए, हमारे शरीर में सुख आ जाए, बीमारियों से मुक्ति मिल जाए, प्लस हम में से फिर हरेक करे तो क्या हमारा संसार, हमारा समाज, पहले हमारा परिवार, फिर हमारा समाज, फिर हमारा शहर या हमारा गांव, और फिर हमारा देश, और फिर हमारा विश्व सारा का सारा स्वस्थ भी बन जाए और सुखमय भी बन जाए। तो उसी पर हम आपके सामने थोड़े से विचार रखेंगे कि कैसे हम अपने आप को इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं, मैं खड़ा होकर अगर आपको प्रेजेंटेशन, बैठिए आप बैठिए, मैं आपको खड़ा होकर दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुखमय जीवन का आधार श्रेष्ठ विचार। आपको कहीं पर लगे आप अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बाद में हम लोग ऐसा कुछ रखेंगे, 10-15 मिनट टाइम मिलेगा तो हम आपसे शेयर करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है? आप पूछ सकेंगे, एक माइक आपको दे देंगे और फिर आप पूछ सकेंगे क्वेश्चन। आप मन में नोट करिए, कागज पर नोट कर लीजिएगा, ये रेडी जी, चल रहा है, ऑन किया हुआ, ओके। तो ये मतलब हम लोग थ्री डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ऐसा हम एक थ्री डायमेंशनल, माना आज की दुनिया में हम सिर्फ वन डायमेंशनल हेल्थ हैप्पीनेस की बात करते हैं, सिर्फ बॉडी के बारे में। डॉक्टर जितना भी करते हैं वो सब किसके बारे में करते हैं? आज हॉस्पिटल में किसका इलाज होता है? शरीर का इलाज होता है या आत्मा का भी इलाज होता है या मन का भी इलाज होता है, है ना? आज जितनी भी रिसर्च हुई है दुनिया में, डॉक्टर्स ने जितने भी रिसर्च किए हैं, जितने भी कार्य हुए हैं, जितना हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जब MBBS पढ़ने जाते हैं तो हमें सिर्फ बॉडी के बारे ही पढ़ाया जाता है ना? MBBS करें, MD करें, DM करें, MCH करें, FRCP करें, इंग्लैंड में चले जाएं, US में चले जाएं, हमको सिर्फ बॉडी के बारे ही पढ़ाया जाता है और बॉडी के बारे में ही सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसकी रिसर्च बॉडी के ऊपर ही होती है। दुनिया में किसी भी डॉक्टर को ना मन के बारे पढ़ाया जाता है ना बॉडी, ना आत्मा के बारे पढ़ाया जाता है। और जबकि इंसान बॉडी कब बनता है, इंसान को बॉडी कब कहते हैं? हाँ, इंसान बॉडी है क्या? ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान को तो ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना। इंसान बॉडी कब बनता है? एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स, बचाने की कोशिश करते हैं, और जब बचा नहीं पाते तो डॉक्टर बाहर आता है ICU से, इमरजेंसी से, पेशेंट के रिलेटिव खड़े होते हैं, रिश्तेदार खड़े होते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं उनको? आप आगे आ जाओ ना, पीछे क्यों बैठ गए, आगे आ जाओ, सभी आगे उठ के आगे आ जाओ। हाँ जी, जो पीछे आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे। तो जब हम उनको, डॉक्टर क्या कहते हैं उनके रिलेटिव को? आई एम सॉरी, वी ट्राइड अवर बेस्ट, ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, हमें उस अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की, वो चला गया या चली गई, क्या ले जाओ? बॉडी ले जाओ। तो बॉडी कब बना? मरने के बाद। हम इलाज किसका कर रहे हैं? किसका इलाज कर रहे हैं? बॉडी का, है ना। मन का इलाज नहीं कर रहे हैं, आत्मा का इलाज नहीं कर रहे हैं, बीइंग है ना, बीइंग का इलाज नहीं कर रहे, सिर्फ ह्यूमन बॉडी का इलाज कर रहे हैं। इसलिए बीमारियां देखने में आ रहा है, जितनी भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, किंतु बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दिन रात बढ़ रही हैं। आज से 50 साल पहले बीमारी कितनी थी? सिर्फ हार्ट 1960 में 100 में से 1 आदमी को हार्ट अटैक होता था, और सिर्फ अमीरों को होता था, स्टेटस सिंबल था कि लोग जो है, जब कहते ना किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, बड़े बड़े घर का आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा, है ना? ऐसा नहीं था, गरीब को नहीं होता था, सौ में से एक आदमी को होता था, और आज आज देखें तो हर घर में एक हार्ट पेशेंट मिलेगा। किसी घर में चले जाओ, कितने साल में हार्ट अटैक हुआ, 25 साल में हो गया, 20 साल में हो गया, 30 साल में हो गया, 35 में हो गया, 40 में। आज 60% हार्ट पेशेंट्स 60 साल की 50 साल की उम्र के नीचे हैं। हर साल 30 लाख लोग मर रहे हैं आज हार्ट अटैक से, भारत में, सिर्फ भारत में 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, उसमें से 16 लाख लोग 50 के नीचे मरते हैं। नंबर वन किलर है, सारे विश्व में नंबर वन किलर हार्ट डिजीज है। तो आज आज बीमारियां ऐसे बढ़ रही हैं, जैसे पहले 1960 में 100 में से एक आदमी को हाई ब्लड प्रेशर होता था, आज 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज 1% लोगों को थी, आज 10% लोगों को डायबिटीज है। आप 1960 के लोगों को देख लो, भारत का एवरेज आदमी देखो, पतला दुबला सा होता था, ताकत बहुत होती थी। आज का हर एक आदमी एवरेज आदमी मोटा वाला है ना, एवरेज आदमी मोटा, बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है ना। तो आज बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई है ना। तो ये हमारा माउंट आबू का हॉस्पिटल, नीचे ग्लोबल ट्रॉमा सेंटर, नीचे हमारा जो नीचे वाला हॉस्पिटल है। तो ये मैं जो आपसे बात करता हूं, देखिए एक तो हम ब्रेन को सभी जानते हैं, मस्तिष्क, ये तो हम देख सकते हैं, इसका वजन है कि नहीं है। ये 1200 ग्राम का दिमाग होता है अंदर खोपड़ी में, जो अंदर अगर खोल के देखते हैं ना, कभी इसका ऑपरेशन भी करते हैं, इसमें ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, उसको निकालते हैं ना, हेड इंजरी हो जाती है तो ब्लड भर जाता है, उसको निकाल देते हैं ना। तो वो उसका हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उसका वजन 1200 ग्राम है, किंतु हमारे मन का वजन कितना है? मन का वजन कितने ग्राम है बताओ? थोड़ा तो होगा, 5-10 ग्राम तो होगा नहीं? ऐसा तो हमें सुनने में बहुत बार आता है। हम लोग कहते हैं ना कि आज मेरा मन इतना भारी है कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता हूं, बोलते हैं ना। और कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं, आज मेरा मन इतना हल्का है लगता है मैं हवा में उड़ रहा हूं, ऐसा भी सुना है ना, है ना। तो भारी कब होता है, हल्का कब होता है? जब स्ट्रेस में होता, तनाव में होता तो भारी हो जाता है ना, और जब पॉजिटिव होता है तो हल्का हो जाता है, राइट। तो अब देखिए कि हमारा मन क्या और क्या है। तो ये ब्रेन जो है ये हार्डवेयर है ना, ब्रेन हार्डवेयर है और मन हमारा सॉफ्टवेयर है। ब्रेन तो जैसे ये हमने कंप्यूटर ना, कंप्यूटर में अभी हमने कंप्यूटर है, कंप्यूटर नया नया कंप्यूटर में कुछ था नहीं, हमने आज स्लाइड डाली देख पा रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो ये स्लाइड्स है सॉफ्टवेयर, और मन क्या है, ये कंप्यूटर है हार्डवेयर, राइट। तो ब्रेन के द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने चेहरे के द्वारा, मन ब्रेन के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। तो अगर खाली ब्रेन आत्मा हो और साथ में उसके साथ मन भी है, किंतु वो आत्मा बाहर हवा में रह करके अब बिना बॉडी के, बिना ब्रेन के अपने मन के विचारों को कह सकती है, भावना को दिखा सकती है? मेरे अंदर जो भावना होगी वो चेहरे पर दिखाई देगी ना। मेरे मन में जो आपके प्रति वृत्ति होगी, किसी व्यक्ति के प्रति एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण दिखाई देगा मेरे चेहरे के द्वारा ना। मेरे मन में जो भी विचार आए, स्मृति आएंगी, जो भी यादें आएंगी, मेरे चेहरे के द्वारा दिखाई देंगी, राइट। तो कंप्यूटर, ये चेहरा तो स्क्रीन है, ये क्या है, ये हमारा हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर है, राइट। ब्रेन कंप्यूटर है और चेहरा स्क्रीन है। तो जैसा विचार, जैसी भावना, जैसी वृत्ति और जैसी स्मृति, वो चेहरे पे दिखाई देती है, राइट। उससे हमारा वायुमंडल, मैं देखता हूं उसी बात पे बात करूंगा, कैसे विचारों से नेगेटिव या पॉजिटिव, कनिष्ठ विचारों से कैसे समाज में दुर्बलता आई है, कैसे हमारा समाज खराब बना है, कैसे हमारा विश्व खराब बना है, और कैसे श्रेष्ठ विचारों से हमारा समाज स्वर्ग जैसा बन सकता है। अगर नरक शब्द पता है कहां से आया आपको, नरक कौन बताएगा? आप सभी विद्वान जन है, बताएंगे ना नरक शब्द कहां से पैदा हुआ? हैं जी, नहीं, नरक, नरक शब्द का मतलब क्या है? नरक शब्द कहां से आया? इस पर थोड़ा लाइट देंगे बोर्ड पे, नरक, नरक शब्द है नरक माना नय प्लस अरक। अरक का मतलब क्या होता है? हा? सात सत्व है ना, सत्व कहते हैं ना, इसेंस ना, रस। तो जिस जीवन में, जिसमें आत्मा, हम कौन है? हम आत्मा है ना, ये तो आप समझ गए होंगे ना, सभी जानते हैं, सभी हम आत्मा है ना, हम बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी नहीं है। बीइंग जो है सत्य, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव मतलब सत्य का मतलब क्या है? सत्य माने एटर्नल, सत्य एटर्नल होता है, सदा होता है ना, ना वो कभी पैदा होता है ना कभी मरता है, ना उसका जन्म होता है ना मरण होता है। पहली बात। दूसरी बात, सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, सत्य जो है जैसा है वैसा ही रहता है हमेशा, छोटा बड़ा नहीं होता है, अभी छोटा था फिर बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है, सत्य सदा ही अपरिवर्तनशील है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? सत्य, सदा सत्य है, सदा ही वो आत्मा है, परम ऊंची से ऊंची आत्मा है ना, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। भगवान शब्द कहां से आया कौन बताएगा? भगवान शब्द कहां से आया? भगवान, भगवान शब्द पांच शब्दों से बना है। भामाना भूमि, गामाना गगन, वामाना वायु, आमाना आग, नामाना नील है ना, जल। तो भगवान वो है जो इन पांचों तत्वों के बंधन से परे है, राइट? आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? आत्मा इन पांच तत्वों के बंधन में है, इस पिंजरे में कैद है, और परमात्मा इस पिंजरे में नहीं आता है, इस पिंजरे के बंधन में नहीं आता है, राइट? तो ये फर्क है भगवान में, परमात्मा वो है। तो परमात्मा सदा ही आत्मा है, हम भी आत्मा है, हम भी परमधाम के रहने, ब्रह्मलोक के रहने वाली हैं, किंतु हम जब इस जन इस सृष्टि में आते हैं तो हम इस बंधन में फंस जाते हैं, एक जन्म लेते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं, किंतु इस बंधन से बाहर निकल नहीं पाते। हम चाहे तो अपनी इसको आत्मा को शरीर को छोड़ सकते हैं क्या? बंधन में, खाली देह के बंधन में नहीं है, देह के संबंधों के बंधन में भी है, बच्चे हैं, बीवी है, बाल बच्चे, जिम्मेवारी है, समाज में जिम्मेवारी, उसको छोड़ नहीं सकते नहीं, तो वो हम बंधन में है। तो भगवान का ये, तो परमात्मा सदा ही इस बंधन से न्यारा है, सदा ही सत्य है, सत्य माना सदा है, बदलने वाला नहीं है, और परमात्मा सदा ही क्या है? सुंदर है, सदा पावन है, सदा पावन है, सदा पवित्र है, सदा सुंदर है। और आत्माएं कैसी हैं? आप जब आगे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि सत्य उत्तरेता में हम सुंदर रहते हैं, सुंदर मन हम भी पावन रहते हैं, देवी देवता जब बनते हैं, और फिर आधा कलप जब द्वापर युग में उतरते हैं तो हम भी पतित बन जाते हैं, द्वापर कलयुग में पतित बन जाते हैं, मतलब आधा कलप में काले बन जाते हैं, श्याम बन जाते हैं, तो हम श्याम सुंदर हैं ना, और परमात्मा सदा सुंदर है। आत्मा परमात्मा सदा ही सत्य है, और हम आत्माएं आधा कलप सत्य हैं, आधा कलप में सोल कॉन्शियस रहती है, आत्मज्ञानी रहते हैं, जब देव देवता होते हैं, जब मनुष्य बन जाते हैं तो हम आधा कलप क्या बन जाते हैं? हम देह अभिमान आ जाता है, हम अपने को मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं, ये हमारे अंदर से भान निकल जाता है, राइट? हम अपने को आत्मा ना समझ के क्या समझने लगते हैं? देह समझने लगते हैं, देह भान में आ जाते हैं, बॉडी बन जाते हैं, कुछ कोई कोई याद भी दिलाए तो मुश्किल से याद आता है ना, कोई मानता भी नहीं है, हमेशा बॉडी की बातें करते हैं, देह अभिमान में, देह के संबंधों में खोए रहते हैं, अपने को देह से ही पहचानते हैं, दूसरे को देह से ही पहचानते हैं, और सत्य उत्तरेता में हम दूसरे को आत्मा से पहचानते हैं, आत्मा ही देखते हैं, हमारी रूहानियत रहती है, यहां क्या रहती है? बॉडी, यहां बॉडी लैंग्वेज होती है, वहां पे स्पिरिचुअल लैंग्वेज होती है, ठीक है, समझिए। तो ये जो है, सॉरी, तो मैं भी बात कर रहा था, तो ब्रेन हमारा फिजिकल है, माइंड हमारा नॉन फिजिकल, माइंड को हम देख नहीं सकते हैं, मन को हम देख नहीं सकते, तो नरक शब्द कहां से आया? ना अरक, जो आत्मा के सात गुण है वो आज की दुनिया में नहीं है, आज हर किसी इंसान के पास ना अपना ज्ञान है, ना उसके अंदर पवित्रता है, ना उसके अंदर शांति है, ना उसको रूहानी प्रेम है उसके अंदर, ना उसके अंदर अतिंद्रिय सुख की फीलिंग है, ना उसके अंदर आनंद है और ना उसके अंदर शक्तियां हैं। तो आज का इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ है, कोई कह सकता है सीना ठोक के मेरे मैं शांत हूं, मेरे मन में कभी खराब विचार नहीं आते हैं, कभी व्यर्थ विचार नहीं आते हैं, जो सोचता हूं वो जो काम करना वही विचार आता है, कोई सीना ठोक के कह सकता है? उसे कहते हैं शांति, है ना। कोई कह सकता है मैं पवित्र हूं, मैं हमेशा शुद्ध विचार आते हैं, किसी को मैं कभी किसी भाव से दूसरी भाव से नहीं देखता हूं, ऐसा कोई इंसान है धरती पर? कोई कह सकता है मैं सबसे प्यार है, कोई कैसा भी है मैं सबको प्यार करता हूं, सबको स्वीकार करता हूं, ऐसा बोल सकता है? कोई कहता है, कह सकता है मैं हमेशा सुख में रहता हूं, अतिंद्रिय सुख में, सुपर सेंसुअल जॉय में रहता हूं, आनंद में रहता हूं? कोई भी नहीं कह सकता। आज की दुनिया में सबके सब हालत ऐसी है, इसलिए इसको नरक कहा जाता है। सब कुछ होते भी नरक है। और स्वर्ग शब्द कहां से आया? स्वर्ग शब्द कहां से आया? सुखमय संसार स्वर्ग को कहते हैं ना, नरक। ये आज की दुनिया दुखमय है ना, तो होती है होगी नरक। स्व प्लस अर्ग। स्व माना क्या? क्वा स्व माना अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं नहीं। स्व मैं आत्मा। स्व माने आत्मा। अर्ग माना वही इसेंस। बहुत सुंदर चीज को अर्ग कहते हैं, आम चीज के रस को अर्ग कहते हैं, और बहुत ही कीमती चीज को, बहुत बहुमूल्य चीज के रस को अर्ग कहते हैं ना। तो स्वर्ग है ना, वो दुनिया जिसमें आत्मा के सातों गुण भरपूर है ना, वहां सत्य की समझ भी है, मतलब हम सूर कॉन्शियस भी हैं, पवित्रता भी है, हर आत्मा शांत है, हर सबका आपस में रूहानी प्यार है, देवी देवताओं को हमेशा अतिंद्रिय सुख में दिखाते हैं, आनंद में दिखाते हैं, और सर्वशक्तियों से भरपूर है, हर संकल्प सिद्ध है, जो चाहे वो दुनिया में वो प्राप्त होती है उन्हें। ऐप कहते हैं, ऐप प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, है ना। हर संकल्प सिद्ध होता है हमारा, हम सोचते रहते हैं होता कुछ भी नहीं है ना। नहीं, ऐसी दुनिया में आ गए ना हम लोग। तो ये है स्वर्ग और नरक, है ना। तो हमें क्या बनाना है इस दुनिया को? ये क्या है हमारा, हमारा इस साल का स्लोगन क्या है? ईयर ऑफ ग्लोबल एनलाइटनमेंट फॉर गोल्डन एज, है ना। कि हम एनलाइटनमेंट दुनिया में क्या करें, ऐसा ऐसे ज्ञान का उदय हो कि जिससे दुनिया क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए, है ना, गोल्डन एज आ जाए, स्वर्णिम बन जाए, है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मन है, ब्रेन में तो हमारे चार पार्ट है, ये दो पार्ट है, 100 अरब न्यूरॉन से बना हुआ है। एक तो हायर ब्रेन है, ये हमारा हायर ब्रेन है, और पीछे के हिस्से में और नीचे वाले हिस्से को लोअर ब्रेन कहते हैं। अब हमारा जो है ये जो मन में चार एस्पेक्ट है, मन खाली विचार नहीं है, मन खाली विचार नहीं है, संकल्प नहीं है, मन में चार चीजें आती हैं, उसके चार मन के थॉट्स। पहली बात थॉट्स माने संकल्प विचार, दूसरी बात भावनाएं, तीसरी बात एटीट्यूड वृत्तियां, और तीसरी बात मेमोरीज स्मृतियां। तो मन में चार बातें हैं, इन चार बातों को देखते हैं आपस में क्या कनेक्शन है चारों बातों का, हम उसे देखते हैं। पहली बात है टी थॉट्स, ई ए एम। तो मन माना टीम, मन माना टीम। कहते ना हमारी टीम अगर पॉजिटिव है तो हम क्या होगा, जीवन क्या है, एक मैच है ना, जीवन क्या है, रोज ही गेम है, एक ही दिन में कितने मैच हम खेलते हैं। अगर हमारी टीम पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, हम मैच जीत जाएंगे, जीवन में बहुत सारे मैच हैं। और अगर हमारी टीम नेगेटिव होगी तो क्या होगा, जीवन के हर मैच में हम हारते जाएंगे, नहीं। तो टीम पॉजिटिव कैसे बनाए हम, जब श्रेष्ठ विचार की बात करें तो श्रेष्ठ विचार माना क्या, हमारी टीम पॉजिटिव हो, है ना। तो कैसे बनती है ये बात सभी समझ के सुने, अलर्ट होकर सुन समझें। तो टीम क्या है, देखिए विचार, विचार कैसे पैदा होते हैं, विचार कैसे पैदा होते हैं बताएं, विचार कैसे पैदा होते हैं? या तो कुछ देखा तो विचार पैदा होगा, सुनेंगे तो विचार पैदा होगा, खाएंगे तो विचार, कोई बोल हम सुन तो खुशबू आए, बदबू आ रही तो विचार पैदा हुआ, नहीं होगा। एक तो कर्मेंद्रियों से हम विचार पैदा होते हैं, मतलब पांच कोई चीज छुएंगे तो गर्म ठंडा, ठंडी ठंडी हवा लगेगी या गर्म लगेगा तो विचार पैदा होगा। तो तो विचार पैदा कैसे होते हैं? या तो इन पांचों कर्म इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, बाहर से जैसे प्राप्त होते हैं। जैसे एक पानी की झील है, उसमें उसमें लहरें कैसे उठ सकती हैं? कैसे कैसे उठ सकती हैं? या तो बाहर से आप पत्थर मारो, ठीक है, पत्थर मारेंगे तो लहरें पैदा होंगी, राइट। और दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? पूर्णमासी की रात को क्या होता है? ज्वार भाटा उठता है। चांद जब फुल मून होता है ना, तो अंदर से ज्वार भाटा उठता है, तो लहरें पैदा हो जाती है, राइट। हवा चलती है तो भी पैदा हो जाती, तो भी कई बार लहरें आ जाती हैं। किंतु मतलब बाहर से ऐसे आएगा ना, या तो कोई बाहर का कोई पत्थर मारा या हवा चली, या फिर अंदर से कब आई? जब फुल मून हो गया तो ज्वार उठा। ऐसे ही हमारे अंदर भी दो तरह से विचार पैदा होते हैं, या तो पांचों कर्मेंद्रियों के रास्ते से विचार पैदा हो गए, या फिर क्या होता है हमारे अंदर सोते सोते भी है ना सपना आ गया, है ना, या कोई ऐसी बैठे कमरे में अकेले बैठे कोई चीज याद आ गई, विचार पैदा होता नहीं होता? अचानक ही कोई स्मृति की फाइल खुल गई, कुछ देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ नहीं, और अचानक अपने आप ही कोई याद आ जाती है, तो विचार चालू हो जाते हैं। तो विचार जो है एक बिंदु के समान है, राइट। और विचार और भावना में क्या फर्क है? ये विचार, राइट, और भावना, ई माना इमोशंस, भावना, इसमें क्या फर्क है? विचार और भावना में क्या फर्क है बताइए, क्या करें? विचार देखने से आ गया, भावना कैसे बनी? ऐसे ही बनी, कैसे बनी? विचार कैसे? एक विचार आया, भावना पैदा हो गई, आप मुझे मिले, भावना पैदा हो गई, कैसे? आप सभी विद्वत जन है, बताइए कैसे कैसे विचार भावना का बन जाते हैं? जब बोलो बोलो, जब विश्वास आता तो भावना आती है, ठीक बात है। एक माइक यहां दे दो ना, अच्छा हैंड माइक दे दो, अच्छा रहेगा ना। देखो, जब भी कोई विचार हम बार बार करते हैं ना, जब भी कोई विचार बार बार करेंगे ना, सपोज संबंधों में स्पेशली होता है, दो संबंध, मां और बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, दो दोस्तों का संबंध, है ना, तो जहां भी संबंध होता है ना, उसके बारे में हम बार बार विचार करते हैं। नए व्यक्ति भी जब कोई मिलता है, अगर वो व्यक्ति मुझे बार बार मिले, बार बार नमस्ते करे, फिर कभी फूल ला के दे, या कोई गाली दे दे, बार बार गाली देता रहे, रोज मिले और गाली देके चला जाए, बार बार मिले रोज गाली देके चला जाए, है ना, सुबह शाम, तो क्या होगा? अच्छा चाहे बुरा, है ना, तो क्या होगा? अब मेरी भावना पैदा हो जाएगी, है ना, नहीं? अगर उसने मुझे रोज फूल दिया तो भी भावना पैदा हो जाएगी, रोज गाली देता है मिलता है तो भी गाली से भावना पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बुरी भावना पैदा हो जाएगी, और नहीं तो अच्छी भावना पैदा हो जाएगी। ऐसे ही मां और बेटा है, दोनों का सारा टाइम क्या चलता रहता है आपस में? बेटा अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, और मां यहां बैठी आबू में, तो क्या होता है? मां यहां बैठी बैठी सोचती है अभी क्या कर रहा होगा, अभी क्या कर रहा होगा, अभी क्या कर रहा होगा, उसको तो ये खाना अच्छा नहीं लगता होगा, ऐसा नहीं लगता होगा, ये ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, है ना, अभी शाम के टाइम क्या कर रहा है, अभी शाम का अभी सुबह हो रहा होगा वहां पे, तो अब ऐसा हो रहा होगा, ऐसा नहीं, और बच्चा मां के बारे में सोचता रहता है, तो बार बार विचार चलता है ना। तो दो व्यक्ति जब विचार बार बार करते हैं तो इसको कहते हैं, तो इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। कोई भी विचार आप गहराई से करें और बार बार करें तो क्या बन जाती है? वो भावना में बदल जाता है, राइट, कोई भी विचार भावना में। और उन दो व्यक्तियों में जो एक दूसरे के बारे में विचार करते हैं, उनके बीच में क्या होता है? फिर वो वाइब्रेशन, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर हो, 5000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर, 20000 किलोमीटर भी दूर हो, तो भी उनके बीच में वाइब्रेशन फ्लो करते हैं। तो भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, क्या पैदा होते हैं? वाइब्रेशन, पावर ऑफ वाइब्रेशन। कितने दूर काम करके थे, दूर तक काम करती है, कितने दूर तक काम करती है? हाँ, वो वाइब्रेशन दूर तो तक जाते हैं दो व्यक्तियों के बीच में, राइट, 1000 किलोमीटर दूर भी हो तो भी वाइब्रेशन जाएंगे, 10000-20000 किलोमीटर तो भी जाएंगे। इसको टेलीपैथी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? टेलीपैथी। अब सपोज मैं कोई बुरे काम करता हूं, दुख दिया मैंने लोगों को, अब उस व्यक्ति को दुख दिया, भले वो व्यक्ति 20000 किलोमीटर, यहां मैंने दुख दिया, या हम अमेरिका में था, मैं अमेरिका से छोड़ के यहां पर आ गया, उस व्यक्ति को तंग करके आया, दुखी करके आया, क्या मैं उसके असर से दूर हो जाऊंगा? व्यक्ति मैसूर में रहता और मैं यहां रहता हूं, मैं यहां आ गया, छोड़ के आ गया हूं, ठीक है, मैसूर से छोड़ के आ गया, अब वो व्यक्ति को दुखी देके आया, तो क्या उसकी वाइब्रेशंस, क्योंकि मेरे संबंध था, तो वो उसकी वाइब्रेशन मुझे क्या करेंगे, चैन से जीने देंगे? उसकी बद्दुआएं, बद्दुआएं भी कहते हैं, दुआएं बद्दुआएं भी कहते हैं ना, वो मुझे बार बार आके हर्ट करती रहेंगी, उसके वाइब्रेशन मुझे बेचैन करते रहेंगे, और मैं सबको सुख दिया, सबको सुख देता हूं, तो उनकी दुआएं क्या करेंगी, वाइब्रेशन क्या करेंगे, मुझे शांति देते रहे, खुशी देते रहे, राइट? तो इस तरह से जो वाइब्रेशंस हैं टेलीपैथी है नहीं, ये मदद, ये हमको सुखी या दुखी बनाने में क्या करती है, चैन देने में और बेचैनी बनाने में, स्वस्थ बनाने में, बीमार करने में। कई बार कहते हैं पता नहीं किसकी दुआएं काम आ गई, कहां का पुण्य काम आ गया, कहते हैं ना एक्सीडेंट से बच गए, कोई बीमारी हुई ठीक हो गए, कि पता नहीं कहां की दुआएं, डॉक्टर तो कह रहे कुछ नहीं हो सकता, अब तो मरना ही नजदीक है, और अचानक ठीक हो गए, दवाई काम कर गई अचानक, क्या पता नहीं कैसे क्या हो गया, समझ नहीं आया कहां से हो गया। तो ये है पावर ऑफ वाइब्रेशंस, राइट? इसलिए एक एक विचार, एक एक विचार से, देखते हैं बूंद बूंद से पानी भरता है, एक एक विचार से भावना बनती है, और एक बार जैसी भावना बन जाती है फिर वैसे वाइब्रेशन आपके हाथ में नहीं है, इसलिए कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, वो गीत बजा सुना होगा यहां पर आपने, ये तो बजाएंगे उसके बाद, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे और जैसे कर्म होंगे वैसा फल पाएंगे। सोचने की छुट्टी आपको है, जो मर्जी सोचो, कि तो सोचने के बाद फल कैसा मिलेगा वैसा बन जाएंगे ऑटोमेटिक, एज यू थिंक सो यू बिकम, एंड एज यू डू, जो कर्म की जो भी एक्शन करेंगे फल पाने की छुट्टी आपको नहीं है, कर्म कर लिया उसके बाद आपको फल आपके आपके हाथ में नहीं है, कर्म का फल, जैसा बीज बोया वैसा ही पेड़ पैदा होगा। तो विचारों से भावना पैदा होती है, और कैसे भावना फिर कैसे हमको असर करती है, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमारे जैसे नेगेटिव अगर सोच होगी तो नेगेटिव वाइब्रेशन जाएंगे चारों तरफ, और जैसी हमारी पॉजिटिव सोच होगी तो पॉजिटिव वाइब्रेशन सारी दुनिया में, और वो सारी दुनिया में जाएंगे, मेरा संबंध संपर्क जहां तक है तो वहां तक पहुंचेंगे, राइट, उन तक पहुंचेंगे। और फिर भावना और वृत्ति में क्या, इसको बोलते हैं वृत्ति, दृष्टिकोण भी कहते हैं, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नजरिया भी बोलते हैं, भावना और वृत्ति में क्या फर्क है? जब कोई भावना को हम लंबा कर देते हैं, विचार को हमने बार बार किया तो भावना बन गई, और जो विचार उस भावना को हमने लंबा कर दिया, उसी भावना को बहुत लंबा समय अपने मन में रख लो तो क्या होगा, ये क्या बन गया अभी, ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, सर्कल बन गया। अब इसमें पहला विचार कौन सा है और आखिरी विचार कौन सा है, सभी पहले हैं सभी आखिरी है ना, नहीं ऐसा, सर्कल में आ गया ना। अब जब वो आदमी क्या लगता है, जब ये भावना को लंबा, उसी भावना को सब लंबा कर लिया, कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी मेरे लिए खराब है, ये भावना मैंने बैठ गई, अब भावना को मैंने कई महीने तक कई साल तक मन में रखा, फिर क्या होगा, अब मेरी वृत्ति कैसी बन गई उस आदमी के प्रति, मुझे हजार समझाया कोई व्यक्ति, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, फिर क्या होगा, मेरी वृत्ति कैसी बन गई उस आदमी के प्रति, हाँ अच्छी बन सकती है, अभी एटीट्यूड बन गया, मेरी वृत्ति बन गई, तो वृत्ति से क्या बन गया, ये अब जो है वृत्ति से वायुमंडल बनता है, क्या बनता है, ऐसे बताया ना, भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं और वृत्ति से क्या बनता है, इसी को ऑरा कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ऑरा, आभा मंडल, प्रभा मंडल कहते हैं, है ना, कहते हैं ना देवी देवताओं के आसपास प्रभा मंडल दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, कृष्ण के आसपास, राम के आसपास, महात्माओं के आसपास, बड़े बड़े विवेकानंद के आसपास दिखाते हैं, गुरु नानक के पास दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, शंकराचार्य के सामने आसपास दिखाते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, ये आभा मंडल दिखाते हैं, प्रभा मंडल, आभा मंडल, ऑरा भी कहते हैं इसको आप। तो जितना आपके जैसे विचार हैं, अगर आप उन्हीं विचारों में, अच्छे विचारों में, शुद्ध विचारों में, ना आत्मिक विचारों में, रूहानियत के विचारों में मगन रहते हैं, तो वही भावना आपके सारे विश्व में, जैसे ना आपको कहते हैं ना, एक साधु महात्मा है, बहुत बहुत तपस्वी है, तो उसके आश्रम के आसपास क्या, उस आश्रम में दूर दूर तक क्या होता है, वाइब्रेशन जा रहे होते हैं। उसके अंदर जब शेर भी आता है ना, कुत्ता भालू भी आता है, हिंसक जानवर भी आके क्या बन जाते हैं, पालतू कुत्ते के समय आके आराम से बैठ जाते हैं, किसी को इंजर नहीं करते। सांप भी होते हैं, नाग, काले नाग भी होते हैं, कोबराज भी होते हैं, वो भी किसी को इंजर नहीं करते। पेड़ पौधे भी अच्छे अच्छे फल उसमें पैदा होने लगते हैं। आसपास जंगल में इतने अच्छा नहीं है कि, तो उसी एरिया में फलों में भी अच्छे, पेड़ पौधे में अच्छी हरियाली, अच्छा आसपास पैदा होना शुरू रहता है। किस कारण? क्या वो साधु महात्मा बैठ के उसमें पानी देता रहता है क्या? नहीं, वो वायुमंडल, वो उसका असर जो पड़ता है ना, उस वायुमंडल का असर, उसके जो संकल्प, उसके जो विचारों से, भावना से वाइब्रेशन, और फिर वायुमंडल जो पैदा होता है, उस वायुमंडल में आते ही हिंसक जानवर भी पालतू जैसा बन जाता है। सुना होगा ना आपने, कई बार देखा भी होगा। आप भी जैसे इस आश्रम में आए तो आपने क्या महसूस किया, क्या महसूस किया? बिना बोले, कई लोग आप में से पहली बार भी आए होंगे, कई बार कुछ दूसरी बार भी आए होंगे, तीसरी बार भी आए होंगे, तो उस आते ही क्या लगता है, बिना बोले क्या महसूस होता है? क्या दीवारों से शांति निकल रही है? दीवारों से शांति निकल रही है? कुर्सियों से शांति निकल रही है? या यहां इस वातावरण से शांति नहीं, यहां रहने वाले लोग, यहां रहने वाले भाई बहने, यहां की जो ब्रह्मा कुमारी बहने, ब्रह्मा कुमार भाई बहने, जैसे उनका जीवन है, जैसे वो जीवन, जैसे विचार है उनकी, जैसी भावनाएं सबके प्रति हैं। आप डाइनिंग में गए, खाना खाने गए, किस भावना से खाना खिलाया, किस भावना से खाना बनाते हैं, अकोमोडेशन में रहते हैं वहां कैसी भावना से आपको ठहराते हैं, है ना? उनकी वृत्ति क्या है, आपके एटीट्यूड क्या है उनके, आपके प्रति, किसी के प्रति भी एटीट्यूड कैसा है। तो उन सब के जो वाइब्रेशन, वायुमंडल है, हम सबके वायुमंडल आपस में मिल जाते हैं, तो सारा का सारा वायुमंडल कैसा हो जाता है, रूहानियत वाला हो जाता है, शांति वाला हो जाता है, रूहानी प्यार, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति वाला, आनंद वाला, है ना? कोई आप बाहर जाके गुस्सा भी कर लेंगे कि तो यहां कोई बात हो भी जाएगी ना, ऊपर नीचे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वहां आप रिएक्शन करते हैं, यहां पर रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना? कोई बात संभालेंगे, सहन कर लेंगे, संभालेंगे, सहयोग करेंगे, है ना? अचानक कोई प्रॉब्लम भी आगे सामना भी कर लेंगे, घर में छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना? क्यों? घर में वो वायुमंडल नहीं है, है ना? यहां पे वो वायुमंडल रूहानियत का है, वहां देहभान का वायुमंडल है, वहां मैंपन का वायुमंडल है, मेरेपन का वायुमंडल है, यहां पर मैंपन मेरेपन का नहीं है, तेरेपन का वायुमंडल है। किसका वायुमंडल है? तेरेपन का, है ना? सब कुछ तेरा, वहां पर क्या है, सब कुछ मेरा, तेरा भी मेरा, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो तूने किया, नहीं, ये बड़ा फर्क है ना। तो ये जो वायुमंडल जब हुआ, जब ये वायुमंडल बनता है, तो वायुमंडल, वायुमंडल के असर में परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल के असर में जब वायुमंडल बन गया ना, जैसे अभी आपको कोई काम कहे, जैसे हमारे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, सारे वर्ल्ड से आते हैं, उनकी आर्टरीज ब्लॉक होती है, उनकी हालत खराब होती है, डॉक्टर बाईपास करते हैं, बाईपास फेल होता है, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी फेल हो जाती है, डायबिटीज इतनी ज्यादा होती है उनकी, है ना, 500 यूनिट इंसुलिन लेके भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, है ना, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है, जरा चल नहीं पाते, 50 कदम चलने में तकलीफ होती है उनको, जो हमारे पास आते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, 99% लोग चाय पीते हैं, 99% लोग, और कई बार हालांकि सबको पता था चाय हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक, सारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है चाय, आप सभी भी चाय पीते होंगे, ऐसा कोई जो चाय नहीं पीता, हाथ उठाओ जो चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीते, हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हैं, चाय 13 है ना, तो मतलब चाय नहीं पीते, क्योंकि सर नॉर्मली इसे नॉर्मली सभी चाय पीते हैं, 13 मतलब अगर हमारे पास 100 लोग बुलाए तो उसमें से 99 लोग चाय पीते होंगे, है ना, एक या दो होते हैं चाय नहीं पीते। हम कहते हैं आज कल से आपको चाय नहीं मिलेगी, घर में कोशिश करते हैं चाय छोड़ने की, नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमने बोला चाय नहीं पियेंगे, मैं जैसे कभी चाय नहीं पीता हूं, हमारे दिल वाले जो भी हमारे जो ग्रुप में हैं जो सेवा करते हैं वो भी चाय नहीं पीते हैं सभी ना, दिल वाले जो आते हैं सेवा में वो भी चाय नहीं पीते हैं ना, तो वायुमंडल ऐसा रहता है ना, तो चाय नहीं पियेंगे तो जब ये बात होती है तो फिर जो है ये जो चाय की जो बात होती है ना, तो हम लोग सुबह उनको बोल देते हैं, कि कल से आपको चाय नहीं मिलेगी, ठीक है, उनका मोबाइल भी ले लेते हैं, पहले दिन ही मोबाइल जमा कर लेते हैं, मोबाइल के सभी अभ्यस्त होते हैं, है ना, मोबाइल हमारे पास जमा हो जाते हैं, सबके मोबाइल हम जमा कर लेते हैं। तो अभी क्या होता है कि जब अगले दिन उनको बताते हैं ऐसे आपको सिंपल नींबू पानी मिलेगा, है ना, सुबह नींबू पानी पी लेंगे, तो हमारे उस हमारे कहने के अनुसार जैसे हम उनको कहते हैं, तो वो एक बार जब हमने उस वायुमंडल में उनको एक बार हमने कहा कि आज आप ये काम नहीं करेंगे, है ना, तो ब्रीफ एक्ट एक बार हमारे उस कहने का उनके ऊपर असर होता है और उसको वो करते हैं, तो ब्रीफ एक्ट होने से क्या होता है, इंप्रेशन बनता है। क्या बनता है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, एक बार मैंने नई बात करने को कहा, उन्हें उन्होंने किया तो एक इंप्रेशन बना, ठीक है, राइट, उनके अंदर एक मतलब एक उनका नया एक अनुभव हुआ, राइट, इंप्रेशन बना, और जब उसको रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्स माना 10 लोग उनको 10 लोग या 5 लोग उसमें उसी बात को कहते हैं, हां मेरे को भी यह अनुभव हुआ, मेरे को भी अनुभव, जैसे अभी सुबह सुबह जब चाय पीने जब सुबह सुबह नहाने के बाद सुबह मेडिटेशन करने के बाद फिर उनको कहते हैं अब नींबू पानी पी लेना, नींबू पानी पी के शहद वाला नींबू पानी मिलेगा, डायबिटीज तो खाली नींबू पानी मिलेगा, और अभी आप फिर जाके स्नान करके आ जाना, तो स्नान करके सब बाहर इकट्ठे आएंगे क्लास में जाने के लिए, तो रास्ते में 100 लोग जा रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे, अच्छा आपने चाय पी क्या, नहीं चाय तो नहीं मिली, नहीं है, अच्छा चाय, फिर बात करते ना आपस में, फिर क्या किया, नींबू पानी, आपने भी नींबू पानी, हमने भी पिया, पेट साफ हो गया मेरा पेट साफ, फिर दूसरे से पूछते हैं, तो आपको पेट साफ हुआ, हाँ मेरा भी हो गया, आपका हुआ, आपका भी, मेरा, हाँ मेरा भी हो गया, आपका हुआ, 10 लोगों ने कहा मेरा हो गया, अभी क्या हुआ, पहले क्या मन में क्या था, बिलीफ क्या था, पहले बिलीफ में ना अंधविश्वास क्या था कि चाय पीने से ही पेट साफ होता है, ठीक है, जैसे कई लोगों को दुनिया में बीड़ी पीने से ही पेट साफ होता है, ठीक है, सुबह सुबह बीड़ी पीने से पेट साफ होता है, सुना होगा ना आपने, वो एक क्या अंधविश्वास है ना, अच्छा कहते बिल्ली रास्ता काट गई काम बिगड़ेगा, अरे बिल्ली अपने काम से जा रही थी, तुम अपने काम से जा रहे थे, अब बिल्ली का तुम्हारे से क्या मतलब, बिल्ली चूहा पकड़ने जा रही थी, है ना, उसका चूहा नहीं मिला बेचारी को ना, तो उसका वो कहे कि तुम्हारा शक्ल देखी तो मेरा काम बिगड़ गया मेरा, तो बिल्ली से क्या कनेक्शन हमारा, छींक आई किसी ने छींक मार दी और मेरा काम बिगड़ गया, मेरा काम छींक से क्या मतलब, मुझे पता, ये विश्वास की बात है अंधविश्वास की बात, बिलीफ है ना। अब शनिवार को कहें भी, मैं कहता कोई कहते मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, मैं छोटा था ना तो मम्मी कहती थी, मम्मी मुझे बोलती बेटा मंगलवार को बाल नहीं कटवाना, नाई के पास नहीं जाना, मैं फिर कभी कहती शुक्रवार को ना आज नींबू नहीं खाना, मैंने कभी क्यों, कि संतोषी माता नाराज हो जाएगी, मैंने संतोषी माता कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे ये देखते रहते कौन नींबू खाएगा, है ना, हनुमान जी ये देखते रहते बैठे बैठे कौन बाल कटवाएगा, है ना, और कुछ काम नहीं रहा क्या, ये देवी देवता इसलिए बने क्या, फालतू काम करने के लिए बने क्या, है ना, तो संतोषी माता किस बात की, मैं नींबू खाऊं उसको टेंशन हो जाए तो क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट का ना, तो ऐसा सोचते थे ये क्या बात है, कैसे देवी देवताओं की बात बनाते हैं, तो हम समझते थे कि क्या सब धंधे देखिए हुए, तो बाद में इसको फिर मैं जैसे जैसे पढ़ते गया, फिर मेडिटेशन करना शुरू किया, ज्ञान को समझा, तो समझ में आने लगी बातें क्या क्या है, रियलिटी क्या है और कैसे हमने इसको बिगाड़ दिया, है ना, तो बिलीफ मतलब बिलीफ बना ना कैसे, अभी नया बिलीफ क्या बन गया, फिर अगले दिन भी करेंगे नींबू पानी से पेट साफ हो गया, तीसरे दिन भी पेट साफ हो, चौथे दिन भी पेट साफ हो गया, फिर क्या बन गया, अब नया विश्वास बन गया कि नींबू पानी से पेट साफ हो जाता है ना, ठीक है, अगर हमने कहा भी आज नींबू पानी नहीं मिलेगा, आज खाली सिंपल पानी देंगे और सिंपल पानी से ही पेट साफ हो गया, अब पानी से अच्छा हमको पानी नहीं मिलेगा फिर क्या होगा, उससे ही पेट साफ हो गया, अब मुझे बताओ कि पानी से और उसका क्या कनेक्शन है, चलो पानी पी लो ठीक है, किंतु चाय से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन ही नहीं है, समझ रहे हैं, तो मतलब ये हमारे बिलीफ सिस्टम है ना, तो अब जब हम वायुमंडल के सर में जो काम वो 20 साल 30 साल में चाय छोड़ नहीं सके वो एक दिन में छोड़ दिया, स्मोकिंग शराब पीते ड्रिंक करते लोग, हम कहते आज के बाद नहीं करेंगे, हमने कहा क्योंकि हम नहीं करते हैं, हमने कभी जीवन में नहीं किया और हमारे साथ जो रहते हैं वो उन्होंने कभी नहीं किया, तो एक असर एक कहते ही क्या होता है छोड़ दिया, तो एक बिलीफ नया बिलीफ, पहले था कि हां इससे हमारा सब कुछ ठीक रहता है, शराब से खुशी रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, फीलिंग होती है, अभी जैसे हमने कहा नहीं, और वो अंदर के फिर जो पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा होते हैं उससे बीमारी खत्म हो जाती है, उससे वो कमजोरी खत्म, दुनिया में वो फील होती थी कमजोरी, इस वायुमंडल में कमजोरी महसूस नहीं होती, शराब बीड़ी छोड़ने में, है ना, या नशा, अफीम खाने वाले भी हमारे पास, अफीम खाने वाले भी आते हैं, काफी हार्ट पेशेंट ऐसे भी जिनको अफीम खाते हैं, खाते थे पहले टेंशन के कारण, तो हमारे पास आए और समझा तो अफीम छूट गई कितनी देर में, क्योंकि वो फिर मेडिटेशन से पॉजिटिव पावर मिल गई, जो अंदर की खुशी थी ना, आनंद जो अफीम से मिलता था वो, क्योंकि हमारे अंदर एंडोर्फिन बनती है, हमारे अंदर, मैं बताऊंगा अभी, अंदर, हमारे अंदर भी मॉर्फिन बनती है, जब आनंद की स्थिति, खुशी और आनंद में आप आते हैं तो हमारे अंदर मॉर्फिन बनती है, उसे एंडोर्फिन कहते हैं, जब अंदर में एंडोर्फिन मॉर्फिन बन रही है बिना पैसे वाली, तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है, ना समझ रहे, तो बाहर की अफीम तो आप नुकसानदायक हो सकती है, अंदर की अफीम तो नुकसानदायक नहीं होती है, तो इस तरह से आप उसको समझे, तो ये जब आपने किया तो रीइंफोर्समेंट क्या क्या बन गया, आपका बिलीफ बन गया, ये नया अंधविश्वास बन गया, ठीक है। और फिर जो क्या हुआ उसके बाद, अगर यही चीज आप बार बार करते जाएंगे रिपीटेडली रिपीटेडली, है ना, तो ये बन गई आपकी आदत, बन गई, क्या बन गई आपकी, जिसको आप हिंदी में संस्कार भी कहते हैं, या इसको पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट बोलते हैं, राइट। तो ये ऐसे, तो चारों का ये कनेक्शन है ना, तो इस विचार लंबा कर दो, उसी विचार को गहराई से करो, बार बार करो, तो भावना बन गई, भावना से वाइब्रेशन बन गए, और भावना से जब उसी भावना को लंबा कर दिया तो वृत्त बन गया, सर्कल बन गया, उस सर्कल के अंदर जब उसी विचार को बार बार अंदर से वही विचार बार बार आते रहेंगे तो उससे आभा मंडल से चक्र घूमता रहेगा ना, चक्र घूमता रहेगा तो आसपास एक जैसे पंखे के आसपास क्या बन जाता है, एक देख रहे हैं आप, एक ऐसा एक वायुमंडल सा बन जाएगा, दिखाई भी देता है अंधेरे में, दिखाई भी देगा, सो फिर चलता हुआ ना, यहां भी जैसे बन गया तो वो फिर आपका एक आभा मंडल बन गया, ठीक है, वायुमंडल, उस वायुमंडल के असर में हम काम करेंगे एक बार तो इंप्रेशन बन गया, उसी चीज को 10 बार लोगों 10 लोगों ने कह दिया, हां ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, है ना, तो फिर वो बिलीफ बन गया, और फिर आपने बार बार किया तो फिर आपका संस्कार बन गया, बीड़ी पी बार बार तो बीड़ी पीने का संस्कार बन गया, गुस्सा किया तो गुस्सा करने का संस्कार बन गया, जल्दीबाजी की तो जल्दीबाजी करने का संस्कार बन गया, चिंता की तो चिंता का संस्कार, डर लगा तो एक बार डर तो बार बार किया, डर का संस्कार बन गया, रोना तो रोने का संस्कार बन गया। जब हम बच्चे थे तो हमारा कोई भी ऐसी बात थी नहीं, हम शांत थे, पवित्र थे, मुस्कुराते थे, सबसे प्यार था, और जब जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ, बच्चे ये था ना, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, है ना, और जो जो इनकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, ऐसा था ना ये था ना, याद है बच्चों, हमारी किताबों में होता था, कापियां होती थी, कापियों के पीछे पुराने वाले लोग समझते हैं, 50 साल के 55 साल के ऊपर वाले कापियों के पीछे एक गीत लिखे रहते थे ना, मेरे देश की धरती, हाँ जी, फिल्म के सॉन्ग, ये फिल्म के सॉन्ग थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, है ना, ऐसे उपकार फिल्म का था ये, कोई कौन सी फिल्म का मुझे पता नहीं, पर ये गीत लिखा होता था कॉपी के पीछे, है जी, हाँ जी, हाँ जी, कौन सी फिल्म थी, दो कलियां, अच्छा ठीक ठीक, तो अभी तो फिल्में देखी हमें बहुत साल बीत गए, 33 साल बीत गए, राइट राइट, हाँ ठीक बात है, हाँ जी, तो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बच्चा हम ये जो आज आपके अंदर जल्दीबाजी की आदत, चिंता की आदत, गुस्से की आदत, डर की आदत, हर बात में मैं करने की, ये को आप लेके नहीं आए थे इस दुनिया में आने के बाद, माता पिता को देखा, भाई बहनों को देखा, टीचर को देखा, स्टूडेंट्स को देखा, है ना, 11 साल की उम्र तक आपके नेचर ही बन गए ऐसे, इसी तरह से आपने देखा कि आप छोटे बच्चे हैं, 4 साल के हैं, घर में पिताजी मां कुछ बोल रही है, बेटा ये काम कर लो, कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बच्चों को भाइयों भाई बहनों को नहीं करते, पिताजी आए गुस्सा किया तुरंत काम करना शुरू कर दिया, तो क्या कहा बच्चे को, क्या इंप्रेशन पड़ता है, गुस्सा करने से काम ठीक जल्दी होता है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करने से काम ठीक होता है ना, मां ने रोके दिखा दिया पिताजी भी शांत हो गए, है ना, तो रोने से काम ठीक हो जाता है ना, तो ये सारी बातें, मां ने कहा अंधेरे में भूत होते हैं, है ना, बच्चे को तो बच्चा सांप को पकड़ लेता है ना, बच्चा सांप को भी पकड़ लेता है, बच्चा कुछ भी कर लेता है ना, बच्चा मेंढक पकड़ लेता है, डर लगता है क्या बच्चे को, डर लगता है बच्चे को, कौन सी कहता है डरना, माँ बाप सिखाते हैं, है ना, वो अंधेरे में भूत होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है ना, कोई साधु 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 बाबा भी आएगा उसके डरते हैं, बच्चे रोना शुरू करते हैं, क्यों, कहेगा इसके झोले में तो बच्चे उठा के ले जाते हैं, तो अब डरना शुरू कर देते हैं बच्चे, साधु बाबा से भी डरना शुरू कर देंगे, कोई मांगने आएगा ना कुछ करने आता तो डरना शुरू, क्योंकि हमने सिखाया बच्चों को, बच्चे नहीं सीख के आते, तो ये सारी सारा हमारी पर्सनैलिटी 11 साल की उम्र तक बन जाती है, ये हमारी पैसिव फेज ऑफ लाइफ है, इसमें हम सोचते नहीं है, जिस चीज का रिवार्ड मिलता है, जिसमें सफलता मिलती है, वो चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, टीचर ने कहा ऐसे बन जाता है, फिर हमारे 12 साल में हार्मोन निकलने शुरू होते हैं, लड़कों में लड़कियों वाले हार्मोन, लड़कियों में लड़कियों वाले हार्मोन, फिर उसके बाद लड़का या लड़की बनना शुरू होते हैं, फिर हमारी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंगली बदलती रहती है, किंतु 11 साल की उम्र तक मेजर पर्सनैलिटी बन जाती है, और उसी के आधार पर हमें बीमारियां होती हैं, राइट। तो मतलब हमारे जो संसार जो बना ना, वो इस तरह से हमने विचारों से बनाया है, समझ गया। तो ये जो है, अगर अब जैसे हमारी जो हमारा बेसिकली क्या बना, अभी तक जितने भी हमारे इंप्रेशन बने कैसे बने, फिजिकल बने, किस पे बने, किस पे आधारित बने, फिजिकल, फिजिकल माना हम अपने को देह समझते रहे, टोल समझते हैं, डॉक्टर हूं मैं, इंजीनियर हूं मैं, महात्मा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, वैसा हूं मैं, बहुत समझदार हूं मैं, बहुत अनुभवी हूं, ये समझ के हम जीवन में व्यवहार करते रहे, और इसी आधार पर हमको ये हमारा आउटर सेल्फ था, आउटर सेल्फ है ना ये, तो हमारा अंदर का घर का, मैं अंदर में तो ऐसा नहीं हूं, तो ये तो मेरा बाहर बाहरी रूप था, रिलीजन, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, ये भी क्या हम पैदा हुए थे क्या, कोई हिंदू पैदा होता है क्या, मुस्लिम पैदा होता है क्या, सिख पैदा होता है क्या, ईसाई पैदा होता है क्या, पैदा होता है, बच्चे हॉस्पिटल पैदा होते हैं तो बाई चांस बदल दे बच्चे, तो सरदार जी का बच्चा उसमें चला जाए तो हिंदू घर में चला जाए, मुसलमान घर में तो मुसलमान भी बन जाएगा ना, हिंदू बन जाएगा, सरदार जी का और हिंदू का बच्चा सरदार जी घर चला जाए तो सरदार बन जाएगा नहीं, या मुसलमान बन जाएगा, तो ये तो कोई धर्म, तो मतलब धर्म भी हमारा आउटर सेल्फ है ना, सो कॉल्ड धर्म हमारा आउटर सेल्फ है, आत्मा का धर्म क्या है, हर एक आत्मा का धर्म क्या है बताओ, शांति है ना, हर आत्मा का धर्म शांति है, हर आत्मा का धर्म प्यार है, हर आत्मा का धर्म खुशी है, कोई भी धर्म का, कोई भी इंसान किसी भी जगह का भी हो, वो हर जगह यही धर्म है, राइट। तो ये जब हम समझ गए कि हमने अभी तक जो भी इंप्रेशन बनाए हैं वो किस आधार पे बनाए, देह के आधार पे बनाए, अपने को देह समझ के बनाए, और जो भी बिलीफ है हमारे अंधविश्वास किस आधार पे है, देह के आधार पे बने, राइट। और जितने भी संस्कार बनाए हैं, आदतें, वो किस आधार पे बनाई है, किसके आधार पे बनाई है, देह के आधार पे बनाई नहीं, तो सारी की सारी जो हमारी जो बनी ना अभी तक, और हम हैं कौन, हम कौन है, आत्मा है। तो अगर हम अपने को आत्मा समझ के सब व्यवहार करें, चाहे पति है चाहे पत्नी है, पत्नी कौन है, आत्मा है ना, पति भी कौन है, आत्मा है, मेरा बेटा भी कौन है, वो भी आत्मा है, बेटी कौन है, आत्मा है, बहू कौन है, आत्मा है, पड़ोसी कौन है, आत्मा है, नौकर कौन है, काम करने वाली भाई कौन है, वो भी आत्मा है, मेरा बॉस कौन है, वो भी आत्मा है, कोई भी है, हम आत्माएं हैं, एक परमात्मा पिता की संतान है, तो आपस में भाई भाई है ना। अगर ये भाव से अगर नए इंप्रेशन बनाए, नए बिलीफ सिस्टम बनाए और नए संस्कार बनाए, तो क्या होगा, हमारी भावनाएं कैसी हो जाएंगी, अगर हमारी ये सोच हो जाए तो हमारे वाइब्रेशंस कहां कहां तक जाएंगे, हर एक तक, दुनिया में हर आदमी तक जाएंगे। अभी हमारा संबंध सिर्फ देह के आधार पे है, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरी मां, ये मेरा बाप, और फिर क्या हो जाएगा, सारे विश्व के हर आत्मा के प्रति मेरे वाइब्रेशन है, जो मैं सोचूंगा सारा वाइब्रेशन सारे विश्व में परिवर्तन होगा, सारा विश्व है ना, वो बताया जैसे श्रेष्ठ सुखमय विश्व बन जाए, वो मेरे वाइब्रेशन, इसलिए एक आत्मा भी ये काम कर सकती है ना, फिर एक से एक क्या बन जाएगा, कारवा बन जाएगा ना, अगर मैं अकेला भी चलूं तो, जैसे कारवा कैसे बन रहा है, ब्रह्मा कुमारी से कारवा कैसे बन रहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मैं सारी दुनिया की परवाह नहीं करता हूं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत है ब्रह्मा कुमारी का, कि मैं अपने को परिवर्तन करूं, आप अपने को परिवर्तन करें, मुझे आपकी चिंता नहीं है कि आप परिवर्तन होंगे नहीं होंगे, मुझ मैं खुद को परिवर्तन करूं, मैं हर कर्म में, हर सोच में, हर बोल में, मैं अपने को आत्मा समझ के हर कर्म करूं, तो क्या होगा, मेरे परिवर्तन से क्या होगा, धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम बट विश्व परिवर्तन होगा। अब हम क्या समझते हैं, दुनिया बदले, मोदी बदले, गवर्नमेंट बदले, ये बदले, वो बदले, तो दुनिया बदले, ऐसे बदलेगी, तो मैं बदलूं, ऐसे थोड़ा ना होगा,
तो सब ये हमारा आधार होना चाहिए। तो हम अपने को, तो हमारे भावनाएं जो हील करेंगी, सारी भावनाएं बदल जाएंगी और फिर हमारा वायुमंडल बदलता जाएगा। वायुमंडल बदलेगा तो नई स्मृतियां बनेंगी, नई स्मृति नए इंप्रेशन बनेंगे, नए बिलीफ सिस्टम बनेंगे, है ना। और नए उसमें क्या होगा, परमात्मा मेरे साथ है, सबसे बड़ा तो ये बिलीफ बन जाएगा ना, सब मेरे साथ है, ये बिलीफ है ना। और ये नए संस्कार बन जाएंगे और फिर जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार बन जाएगा। तो इस और जैसे संस्कार बनेंगे, स्मृतियां बनेंगी, फिर वैसे ही मेरा क्या बन जाएगा, वैसी मेरी वृत्ति, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो मेरा एटीट्यूड भी सबके प्रति वैसा होगा, फिर मेरा वैसा वायुमंडल बन जाएगा, फिर वैसे ही भावना पैदा होगी, शुभ भावना शुभ दूर दूर तक जाएगी, फिर वैसे ही संकल्प पैदा होंगे। तो इस तरह से मेरे अंदर परिवर्तन होता जाएगा। तो एक बार स्मृति बन जाने के बाद रिकॉर्ड होगी ना अंदर, फिर वैसा परिवर्तन होता जाएगा। चलिए मैं थोड़ी सी ये दिखा देता हूं, आप देखिए इसको लाइट ऑन लाइट ऑफ कर दीजिए। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, देख रहे हैं, ये हमारे अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। आवाज देंगे, आवाज है।
Those particular chemicals are called peptides. They're small chain amino acid sequences.
आप सुन लीजिए, फिर मैं बताता
हूँ। A carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization, there's chemicals for lust, there's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the emotional state in our body, or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds...
देखिए, ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक ये बताया कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, हर विचार के लिए, हर भावना के लिए, चाहे वो जल्दीबाजी की भावना हो, चिंता विचार हो, गुस्से का विचार हो, उदासी का विचार हो, कैसा भी बने विचार होता है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में दो ब्रेन ना, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों का सेंटर जो है ये हाइपोथैलेमस है, ये इसका दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है। तो जो भी हमने देखा, सुना, बोला, खाया, या अंदर से कोई विचार स्मृति से आया, तो हर विचार के लिए वो यहां पर वो केमिकल का निर्माण होता है। हाइपोथैलेमस जो दिखाया ना बीच में से ढक रहा था ब्राउन ब्राउन, तो उसमें यहां वो केमिकल बनता है हर विचार के लिए, जिसको न्यूरोपेप्टाइड कहते हैं। और वो न्यूरोपेप्टाइड फिर ब्लड के द्वारा हमारे खून से, ये देख रहे हैं ये लाल रंग की कुंडी खुशक है, ये नाली है, खून की नाली है, इसके द्वारा हमारे आगे शरीर में हर कोशिका पे पहुंचता है। अब देखिए कोशिका पे क्या होता है, और हर कोशिका पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आप आबू रोड स्टेशन पे आए, तो आप यहां हमने कहा रिसीव किया आपको, आबू रोड स्टेशन पे रिसीव किया ना, तो हमने रिसीव किया आबू रोड का रिसीविंग स्टेशन क्या है, आबू रोड स्टेशन है, तो हमने आपको आबू रोड पे रिसीव किया, फिर यहां लेकर के आए। इसी तरह से हमारे हर सेल के ऊपर, हर कोशिका, हमारी बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, 80,000 अरब, ब्रेन में 100 अरब, और टोटल बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं, हर कोशिका पे ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए, दिखाएंगे कैसे रिसेप्टर्स पे। और ये लाल रंग का जो केमिकल बन के जा रहा है, वो उस पे उसको जाके यूं जैसे लॉक ताला और चाबी होता है, उस तरह से लग जाता है। और जैसे ही वो ताला चाबी की तरह लगता है, उस सेल के अंदर रिएक्शन की संख्या बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मली एक कोशिका में एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शन होती है, कितनी होती है, एक सेकंड में, एक सेकंड कितना, इतना सा, एक कोशिका में कितने रिएक्शन होंगे, 1,00,000, और 80,000 अरब में कितने हो गए, 80,000 अरब इंटू 1,00,000, एक सेकंड में कितने रिएक्शन होगा, 80,000 अरब इंटू 1,00,000 हो गए, ठीक है। और 1,00,000 इतनी रिएक्शन को, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है, एक सेकंड में वॉश भी कर लेती है, टॉक्सिन जो बनते हैं ना, जहरीले पदार्थ बनते हैं, उनको साफ भी कर लेती है। क्योंकि एक हार्ट के धड़कन में, हार्ट हमारा 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, मैं 60 सेकंड में 70 बार धड़कता है, तो एक एक धड़कन कितना समय, 0.85 सेकंड, तो 0.85 सेकंड में साफ भी हो जाता है, टॉक्सिन बना, काम किया और साफ भी हो गया, है ना, इतनी कैपेसिटी है हमारी बॉडी में। और जब जल्दी करते हो तो कितनी रिएक्शन हो जाती है, जल्दीबाजी का विचार आया, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना, जैसे मैं ज्यादा समझदार हूं, तो 1,20,000 रिएक्शन हो गई, चिंता की तो 1,40,000 रिएक्शन हो गई, चिड़चिड़ापन लाए तो 1,60,000 हो गई, गुस्सा किया तो 1,80,000 हो गई, जोर से गुस्सा किया 2,00,000 हो गई, ठीक है।
कितना बढ़िया होगा, जितने भी एक्सरे से टॉक्सिन बने उतने ज्यादा टॉक्सिन भर गए ना सेल्स में, सेल बीमार हो गए, ज्यादा ही टॉक्सिन करते रहो, गुस्सा करते रहो, मर जाएगी, जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओगे। आज आदमी बूढ़े जल्दी क्यों हो रहे हैं, इसी खुशी में हो रहे हैं, है ना, ज्यादा बीमार किस खुशी में हो रहे हैं, इसी खुशी में हो रहे हैं, है ना। तो जल्दी चिंता गुस्सा करना जरूरी समझते हैं, अरे मैंने कहा ना ऐसा होना चाहिए, अब कर लो, मेरा मैंने कहा तो बीमार भी हो जाओ, है ना, हार्ट की बीमारी भी ले आओ, ब्लड प्रेशर भी ले आओ, डायबिटीज भी ले आओ, कैंसर भी ले आओ, एसिडिटी भी ले आओ, है ना, सब ले आओ, क्या कमाया, क्या कमाया आपने।
People who are willing to share our emotional needs, our feelings, whatever they are, whether they are situation, whether they are victimized, poor me, poor you.
It's a good word.
There's a part of the brain called the hypothalamus. The hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that match certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides, or small chain amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization, there's chemicals for lust. There's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the emotional state in our body, or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now every single cell in the body has these receptors on the outside.
And one cell can have thousands of receptors studying its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally, like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor.
It's
like a doorbell buzzing. Sends a signal into the cell.
It's party time!
Science knows now that the hypothalamus makes neuropeptides, and those neuropeptides are strong chemicals.
Well, here's the story of the peptide in the cell. The peptides bind the receptors and dock onto them and stay attached. They come off and then they can come back on again. And while they're there, they are changing the cell. A receptor that has each cell has a consciousness, particularly if we define consciousness as the point of view of an observer. There is always the perspective of the cell. The cell knows where it's going. The cell knows whether it's about to divide or whether it's in a program to stop dividing. In fact, the cell is the smallest unit of consciousness in the body.
Cells are yelling up to the brain saying, we haven't gotten our fix today. And it's going to start sending impressions to the brain, and the brain is going to start to formulate imagery. It's going to sound like voices in our head. Think of a reason why we should be confused. And the body is going to be telling the brain that it's not getting its chemical needs met. And so the brain will then activate start going to our past situations and flashing pictures to our frontal lobe.
Oh, yeah! We've commandeered an entire serving plate!
But my definition of an addiction is something really simple. Something that you can't stop. We bring to ourselves situations that will fulfill the biochemical craving of the cells of our body by creating situations that meet our chemical needs. If you can't control your emotional state, you must be addicted to it.
People that complain
are people who are willing to share our emotional needs, our feelings, whatever they are. Whether they are sexual, whether they are victimized, poor me, poor you, whether they are power, you need somebody to control you. So you feel like you're in control.
No, ma'am, don't dip your half-eaten shrimp back into the cocktail sauce. Well, yes, and your health code. I am the bride. Stick my ass in the cocktail sauce if I damn well please. Come on. I want you to get out there and serve me. Sure, everybody.
समझ में आई आपको? कैसे हमारे विचार, कैसे हम नेगेटिव विचार, कंप्लेन करते हैं, रोते हैं, कुछ करते हैं, कैसे हमारे शरीर पर उसका असर होता है? हर विचार का असर कैसे हमारे शरीर पर हो रहा है? तो जैसे आपका विचार वैसे आपका जीवन. नेगेटिव विचार तो नेगेटिव जीवन है ना, और अच्छे विचार अच्छा जीवन, श्रेष्ठ विचार तो श्रेष्ठ जीवन. तो ये मैं आपको थोड़ा सा, टाइम तो हो गया है, मैं समय एक दो स्लाइड और बातें बता देता हूं, एक दो बातें और. तो ये आप देखिए, अब पॉजिटिव विचार कहां से आएंगे? जब आपकी कॉन्शियसनेस में ट्रूथ होगा. तो अगर आपकी कॉन्शियस दिल में, दिल में ना, ये आत्मा का दिल, शरीर तो ये आत्मा का, शरीर का दिल है, इसमें कोई रह सकता है क्या? इस दिल में कोई रह सकता है? इसमें चार चैंबर है और चारों में खून भरा हुआ है. अगर ये 70 बार धड़कता है, अगर इस दिल में रहना भी लगे तो क्या होगा? 70 बार अंदर बार होना पड़ेगा. इसमें कोई रह नहीं सकता है. हमने बहुत सारे हार्ट खोले हैं, कभी उसमें कोई रहा दिखाई नहीं दिया ना, है ना. इस दिल की बात नहीं है, दिल एक मंदिर है. दिल कौन सा? ये दिल मंदिर है. आत्मा का जैसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, वो मंदिर है. उस दिल की बात करते हैं जो कवियों की शायरी में, कवियों में, शायरी में, फिल्मों में, गीतों में, आम भाषा में जो दिल की बात करते हैं ना, वो इस दिल की बात करते हैं. इस दिल की बात नहीं करते हैं ना. हाँ, इस दिल में जो रहता है उसका असर इस दिल पे होता है. वो कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है, इस दिल पे उसकी चोट पहुंचती है, राइट. तो ये हमें समझने की बात है. तो ट्रूथ से पॉजिटिव माइंड बनता है. जब आपके दिल में, आपकी कॉन्शियसनेस में ट्रूथ होगा, सत्य होगा. सत्य माना मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान. उसे मैं ABCD कहता हूं. ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा मिस को बूढ़ा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं, परमात्मा शिव है ना, शिव परम पिता परमात्मा शिव, तो वो बाबा है ना, तो वो परमात्मा. हम सब आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा है ना, तो वो परमात्मा, हम उसके बच्चे हैं. और सी माना कनेक्शन, हमारे सर्व संबंध उससे, उसके साथ हैं. आरती में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे. हर संबंध की अनुभूति उसके साथ करें. उसके साथ हमारे संबंध है, दुनिया में हमारे संबंध नहीं है, हमारे फर्ज है, हमारे कर्तव्य है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति, देश के प्रति, ये हमारे फर्ज है. संबंध नहीं है, ये बंधन है. क्या है ये? बंधन है ना. संबंध तो ऊपर है, बंधन नीचे है, राइट. इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसमें फंसे हुए हैं. अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, अकाउंट क्लियर करना है. वो तभी कर सकते जब परमात्मा से वो शक्तियां मिलती रहें. और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक है. इस नाटक में हर आत्मा एक्टर है. हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है. और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है. और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है. इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है. अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है? कोई हमारी इंसल्ट करता है रोज, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ. कोई रोज गाली देता है हमको, अच्छा हुआ. किसी 10 लाख रुपए ले ली वापस नहीं करता है, अच्छा हुआ. क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ बोलो, हाँ. सचमुच अच्छा हुआ। देखो मैं एक बार हिसाब लगाया था, किसी ने आपसे 10 रुपया उधार लिया, आपने 10 रुपया किसी पिछले जन्म में 100 साल पहले 10 रुपया उधार लिया, और 10 साल के बाद वो आदमी आपका दोस्त था पहले, अब आपका बेटा बन के आ जाता है, बेटी बन के आ जाता है, या पति या पत्नी बन के आ जाता है, तो 10 साल के बाद उसको आपको वापस करना है, वापस तो करना पड़ेगा ना ब्याज के साथ, कर्मों का हिसाब, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। तो 10 साल के बाद ब्याज कितना हो गया, 10 साल के बाद ब्याज लगाना आप ध्यान से, मेरे पास लगा हुआ है, 10 साल के बाद ब्याज 10 रुपए का ब्याज कितना हो गया, 4,19,00,000 रुपया बनता है। आपको शायद मजाक लग रहा होगा, किसी सीए को बोलना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताएगा 100 साल का ब्याज, 4,19,00,000 रुपया ब्याज बनता है उसका। तो अब आपको 10 रुपया नहीं वापस करना है, 4,19,00,000 वापस करना है। आप सोचो किसी को 100 साल पहले आपने 2 गाली दी थी, आप कितनी गाली खानी पड़ेगी, सोचो सुबह शाम गाली खानी पड़ेगी, और चुप रहना पड़ेगा, बोले तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी, डबल हो जाएगा। ठीक है, कोई गाली देता है आपको, गाली खानी पड़ेगी, चुपचाप खानी पड़ेगी। घरों में क्या हो रहा है आज आपके साथ, क्या हो रहा है, सब कुछ करते करते क्या करना पड़ता है, गाली भी खानी पड़ती है, इंसल्ट भी सहनी पड़ती है, और चुप भी रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता, बोलोगे तो क्या होगा, और पेनल्टी लग जाती है ना। ये है जो हुआ अच्छा। आज बीमारी क्यों हो रही है सभी, मन की और तन की, इस कारण से, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा, हर आदमी ये समझ रहा है मेरे साथ जो हुआ, चाहे वो मन की बीमारी हो रही है, चाहे स्किजोफ्रेनिया हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, फोबिया हो रहा है, चाहे हार्ट डिजीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, कैंसर हो रहा है, सबका कारण यही है, एसिडिटी बन रही है, मोटापा चढ़ रहा है, घुटने खराब हो रहे हैं, कमर खराब हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, सबका कारण यही है। माफ नहीं किया लोगों को, जो हुआ अच्छा, मैं देखूंगा, मैं बदल लूंगा, और जो हो रहा है कैसा हो रहा है, अभी समझ आ गई, सत्य की समझ आ गई, जो हो रहा है अब अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अब समझ आ गई ना, पहले बेसमझी में काम करते, अब नया परमात्मा से ज्ञान मिला, उसके आधार पर जीवन जी रहे, तो अब जो है ये जो ट्रुथ से पॉजिटिव माइंड बनता है, और रियल से अनरियल से नेगेटिव माइंड बनता है। तो जितना आप पॉजिटिव करते जाएंगे, तो हर बीमारी का कारण यही है, मैं समझता हूं, इसको मैं लास्ट में ले जाता हूं, तो बेसिक यही है, ये सब छोड़ देता हूं मैं, अभी टाइम नहीं है। कोई बीमारी को भी आप बदल सकते हैं, किस तरह से, नेगेटिव सोच के कारण बीमारी पैदा हुई है, सोच को पॉजिटिव कर दीजिए तो आप हेल्दी बन जाएंगे, और साथ में इनक्यूरेबल का मतलब क्या है, इन प्लस क्यूरेबल, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज नॉट क्यूरेबल, इसका मतलब इट इज क्यूरेबल, इफ यू गो इन, अंदर जाओ तो अंदर जाके देखो कि मैं कौन हूं, तो ये जो है आपको, ये भी मैं छोड़ देता हूं, ये हमने जो बनाया ना, ये बनाया सिस्टम कि आत्मा के साथ एनर्जी है, आत्मा के पास 7 एनर्जी है, उस ज्ञान पवित्रता शांति, ये 7 एनर्जी है, आत्मा के 7 एनर्जी बॉडी की हर कोशिका के लिए आवश्यक है, किंतु एक एनर्जी स्पेशल है, और मन के माध्यम से वो एनर्जी बॉडी में जाती है, मन माना टीम, तो हमारी टीम अगर पॉजिटिव होगी ना, तभी एनर्जी बॉडी में जाएगी। जैसे ब्रेन के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, सत्य की समझ चाहिए, ज्ञान ABCD, सत्य की समझ, हमारे 5 सेंस ऑर्गन, आंख नाक कान मुख त्वचा के लिए, और इम्यून सिस्टम के लिए, बीमारी से लड़ने के सिस्टम के लिए प्योरिटी चाहिए, पवित्रता चाहिए, लंग्स के लिए शांति चाहिए, हार्ट के लिए प्रेम चाहिए, पेट के लिए खुशी चाहिए, हमारी ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, इसके लिए, एड्रिनल ग्लैंड के लिए हमें आनंद चाहिए, और जोड़ों के लिए शक्तियां चाहिए, हड्डियों के लिए शक्तियां चाहिए, और किडनी को साफ करने के लिए टॉक्सिन्स चाहिए, हमारे लिए 7 एनर्जी का बैलेंस चाहिए। और जितना हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद करते हैं, तो आत्मा सुबह स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 से 5 के समय अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे 7 एनर्जी वो आत्मा में आने लगती है, साथ साथ हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, पापक्रम भस्म होने लगते हैं, और 8 बजे तक अगर चुप रहे तो हमारी टीम, हमारी एनर्जी, शांति, प्यार, खुशी हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। उसके लिए हम 8 बजे तक चुप रहते हैं, अपनी टीम को पॉजिटिव रखते हैं, हम रोज परमात्मा के महावाक्य से मुरली कहते हैं वो सुनते हैं, और फिर 8 बजे के बाद हम बोलचाल में आते हैं, मोबाइल खोलते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, अखबार पढ़ते हैं 8 बजे के बाद, और बॉडी के लिए हम शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे, शुद्ध सात्विक सैर करेंगे, और समय पर सो जाएंगे परमात्मा की याद में, परमात्मा को सब कुछ बता करके, जो भी गलतियां हुई या अच्छी बात भी हम बाबा को, परमात्मा को शेयर करके, लेटर लिखते हैं, चार्ट भरते हैं, याद का चार्ट भरते हैं, फिर मुरली पढ़ के परमात्मा को याद करके सोते हैं,
तो और फिर हम प्रॉपर मेडिसिन खाते हैं, अगर आवश्यकता है तो, वो भी रोके नहीं खाते, प्यार से खाते हैं। तो ये एनर्जी, आत्मा की एनर्जी, जो आत्मा की एनर्जी है वो बॉडी के आसपास इकट्ठी, उसी को आभामंडल कहते हैं, आसपास इकट्ठी होती जाती है, वो हमारी रक्षा करती कवच के रूप में। इस तरह से हमारी जो है यही राजयोग मेडिटेशन है, और ये हमारा मेन मैसेज है कि स्पिरिचुअल केयर, सबसे पहली बात ईट नेचुरल, सी बी नेचुरल, जो भी काम करो अपने को आत्मा समझ के करो, सारा दिन ये आत्मा के सातों गुणों का अनुभव करते रहो, इसके लिए सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करो और अपने आनंद की स्थिति का अनुभव करो, फिर 8 बजे तक पॉजिटिव रहो, टीम को पॉजिटिव रखो और नेगेटिव मत कुछ भी करो, 100 टीम को पॉजिटिव रखने, मुरली सुनते हैं उससे हमारे हार्मोन ठीक बैलेंस में आते हैं। ईट नेचुरल, फल सब्जियां अंकुरित परमात्मा की याद में बनाओ, परमात्मा की याद में खाओ, सुबह 45 मिनट सूर्योदय के बाद पेट साफ करने के बाद सैर करो, शाम को हो सके तो आधा घंटा शाम को टहल लो, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ और प्रॉपर दवाई खाओ। तो इस तरह से हम ये करते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने जो रिसर्च की थी, लास्ट में ले जाता हूँ, सिर्फ जब ब्लॉक्स दिखाता हूँ कैसे ब्लॉक, डायबिटीज ब्लड प्रेशर तो ठीक हुए ही, और लोगों के कैसे, अभी टाइम नहीं इन बातों के लिए, मैं लास्ट में आपको सिर्फ एंजियोग्राफी दिखाता हूँ। एक बार लाइट ऑफ कर दीजिए, 93% पेशेंट्स के ब्लॉक खुले, और कैसे खुले आप देखिए, खुद देखिए, लाइट ऑफ कर दीजिए एक मिनट, स्टेज की भी हाँ, नेक्स्ट ये देखिए, देखिए ये 90% ब्लॉक का खुल गया, देख रहे हैं यहां पर, सिर्फ राजयोग मेडिटेशन से, डाइट से, एक्सरसाइज से। राजयोग मेडिटेशन किया इन लोगों ने रेगुलर, और एक्सरसाइज की रोज सुबह 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 शुद्ध सात्विक सैर, हमारी वॉक मेडिटेटिव वॉक है, परमात्मा की याद में लोग सैर करते हैं, 110 स्टेप कदम पर मिनट के हिसाब से 45 मिनट है ना, वो वॉक करते हैं बिना बोलते हुए, तो 90% ब्लॉक देखिए खुल गया है। ये है मेडिटेशन का कमाल, साथ में शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, शुद्ध सात्विक से 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, और हमारा मेडिटेशन कोई आधा घंटा सुबह शाम के लिए नहीं है, सारा दिन सोल कॉन्शियस का अभ्यास है। राजयोग मेडिटेशन में ना चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ कॉन्शियस, सुबह शाम आधा घंटा शाम को गहरा प्रैक्टिस करते हैं, इंटेंस मेडिटेशन करते हैं, फिर तो फिर सारा दिन हम टेंशन रखते हैं कि मैं कौन हूं, इस कॉन्शियसनेस से बिहेव करते हैं सबसे। तो ये खुल गया है, देखिए इतना लंबा ब्लॉक यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ब्लॉक खुल गया है, देखिए ये 100% ब्लॉक खुल गया है, ये देखिए ये 100% ब्लॉक खुल गया है, ये सारे ब्लॉक्स खुल गए, ये 80 और 90% ब्लॉक खुल गया है, देख रहे हैं ये ब्लॉक है यहां पर खुल गया है, देखिए ये इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, इसकी हार्ट की पंपिंग पावर 30% हो चुकी थी, हार्ट बड़ा एनलार्ज हो गया था, और जब इसने दोबारा इस प्रोग्राम को फॉलो किया तो देखिए इसकी ब्लॉक, इसकी हार्ट की पंपिंग, हार्ट वापस छोटा हो गया, मतलब हार्ट रीजनरेट हो गया, मसल नई मसल बन गई, कहते डेड को कोई जिंदा नहीं कर सकता, कहते डेड भी जिंदा हो गया, कैसे जिंदा होगा, जो कि स्टेम सेल थेरेपी करो तो 6 लाख रुपए लगते हैं, और इसमें बिना ही उसके सिर्फ मेडिटेशन और डाइट एक्सरसाइज से 80% ब्लॉक खुल गया। ये देखिए आगे बस ये देखिए इस पेशेंट की पंपिंग पावर 20% रह गई थी हार्ट अटैक आने के बाद, लार्ज हार्ट हो गया था, और जब इसने दोबारा इसको दोबारा एंजियोग्राफी 1 साल बाद की हमने, तो देखिए उसके हार्ट की पंपिंग 50% हो गई, नॉर्मल 60% होती है, हार्ट बिल्कुल नया बन गया है ना, ये देखिए 100% ब्लॉक खुल गया है। कंट्रोल ग्रुप में क्या हुआ, जिन्होंने डाइट को फॉलो किया, एक्सरसाइज फॉलो किया, राजयोग मेडिटेशन नहीं किया, उनका देखिए उनके सारे ब्लॉक बढ़ गए, क्योंकि हमने पाया कि हर ब्लॉक के लिए हमारे विचार रेस्पॉन्सिबल है, जब तक उन विचार के सोचने का ढंग को नहीं बदलेंगे हमारे ब्लॉक निकलेंगे नहीं, इसलिए हम एंजियोग्राफी देख के ही बता देते हैं कि इसका ये ब्लॉक इस विचार से हुआ है, तो एंजियोग्राफी देख के हमको समझ आता है ये आदमी कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, तो लोग हाथों की रेखाएं देख के बताते हैं, हम लोग एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं कि उनकी सोच कैसी है, उनका जीवन कैसा है। तो ये देखिए ये ब्लॉक खुल गया, ये ब्लॉक बढ़ गया, देखिए एक पेशेंट की ओर दिखा देता हूं लास्ट में, देखिए इस पेशेंट की 100% ब्लॉक थी आर्टरी, ये 100 कट ऑफ है यहां पर, जब इसने दोबारा इसको पूरा फॉलो किया तो देखिए इसका ब्लॉक पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी देखिए पूरी है ना, तो कैसे हुआ, ये यही तरीका है इसका होने का। ओके, ओम शांति।